ओम शांति। बाबा से मिलके कैसा रहा सबको? कैसा रहा? माताओं को सुख मिला? मिला या लगा बाबा जोर से क्यों बोलने लगा? सच सच बताओ, लगा तो सही। जिनको आदत है बाबा अव्यक्त आवाज में बोले वो सुनने की, उन्हें लगा तो जरूर होगा कि बाबा सुरेश भाई जोर से बोल रहा है। लगता था क्योंकि लंबा समय आदत पड़ी है ना अव्यक्त आवाज सुनने की, होता है ऐसा। क्यों हुआ ऐसा समझ में आ गया? बोलो, जिसको समझ में आया हो उत्तर दो। हैं? एक ठहर, एक एक अमित। हाँ डॉक्टर कुछ बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? ताकत ज्यादा लगाना पड़ता था बाबा को। सीधा सा उत्तर घरेलू। हाँ, और माताओं को कुछ समझ में आया? सीधा सा उत्तर है, रहस्य जानना चाहिए सभी को। बाबा जब साकार में थे तो ब्रह्मा बाबा ध्यान में थोड़ा ही जाते थे, बस आके बैठे शिव बाबा आया, पहले से ही आ जाता था। तो बाबा की आवाज फुल रहती थी ना ब्रह्मा बाबा की, ऐसे ही अब बाबा दादी जी को ध्यान में नहीं खींचते हैं, सीधे बाबा आ गए, पता भी नहीं चला। परसों तरसों तो सब देखते ही रह गए, हम भी देखते रह गए कि दादी ध्यान में जाएगी, पर जब पहला गीत पूरा हो गया तो समझ में आ गया बाबा चेहरे को देख के कि बाबा आ गए हैं। तो बाबा डायरेक्ट आ गए, आधे मिनट में ही आ गए थे, दादी बैठी और बाबा आ गए थे, इसलिए आवाज फुल थी। इसका अर्थ कोई ये ना सोचे दादी गुलजार बोल रही थी, कौन बोल रहे थे? ऐसी आभास होता था या नहीं? या कोई ये न कहे ने संशय आ गया इसलिए बोल रहे हैं? खुल के बोलो जरा, आपके संशय दूर करेंगे हम। क्या माताओं का हाल है? ठीक है, आनंद आया? कुछ माता हिंदी नहीं समझती मुझे पता है, फिर भी समझ लेंगी। तो बाबा की मुख्य बात पर ही हम आज चर्चा करेंगे, जो बाबा पिछले साल भी बहुत कहते थे और इस बार भी। कौन सी सुरेश? नहीं, बाबा के दिल में और बच्चों के दिल में मुख्य बात तो वही थी। तो बाबा को क्या है, बहुत प्यार फील होता है ना, बहुत बच्चे बैठे हैं 25,000, एकदम खुशी का माहौल और बहुत प्यार की फीलिंग, वो हम नहीं समझ पाते, वहां बाबा को वो पूरा दिखाई देता है कि बच्चे बहुत प्यार में बैठे हैं। तो उसकी लहर ही वो हो जाती है कि बच्चों के दिल में बाबा है। अब सोचने की बात है, बाबा के दिल में बच्चे कौन रह सकते हैं? बाबा के दिल में और बच्चों के दिल में बाबा, किन के दिल में बाबा रह सकता है? दोनों बातों पे जरा चिंतन करना है। इस संसार में, ब्राह्मण संसार में कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिन्हें बाबा बहुत प्यार करता है, और बहुत ऐसे हैं जो बाबा को बहुत प्यार करते हैं। कोई नहीं कहेगा हम बाबा को बहुत प्यार नहीं करते, सब कहेंगे बहुत प्यार है हमारा बाबा से, तब तो आए हैं, तब जीवन समर्पित किया है, तब माताएं अपने घरों को छोड़ के सेवाओं में लगी हैं। तो बाबा से सबका बहुत प्यार है, प्यार हमारे याद का आधार होता है। दो चीजें, भक्ति में भी ये प्यार रहा भगवान से, लेकिन क्योंकि भगवान का ज्ञान नहीं था तो कोई श्री कृष्ण को प्यार करता रहा, कोई राम को, कोई कोई अपने इष्ट देव देवियों को। अगर शिव का परिचय होता कि वो हमारा परम पिता है तो प्यार उसमें ही जाता। लेकिन प्यार के साथ संगम युग पर और किस चीज की बात हो गई? बाबा ने और क्या दे दिया? ज्ञान। ज्ञान से हमें मिल गया ज्ञान का तीसरा नेत्र। संपूर्ण राजयोग की विद्या हमें मिल गई। तो प्यार के साथ हम जब उसकी महिमा करते हैं तो हमें उस तरह की फीलिंग भी रहती है। हम उसे प्यार कर रहे तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारा है, ठीक है ना? वो हमारा है। प्यार हमेशा अपनों से होता है। देखो, एक कहानी बचपन से ही सुनते थे, मैं आप सबको याद दिला दूं। अबू बिन आदम एक कोई व्यक्ति था, अबू नाम का। उसके स्वप्न में फरिश्ते आते थे। आया फरिश्ता, उस दिन हाथ में एक लंबी लिस्ट थी, उसमें नाम लिखे थे बहुतों के। उसने पूछा फरिश्ते से, ये क्या नाम लिखे हैं? कि उनके जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं। तो उसने पूछा, देखो मेरा भी कहीं नाम है क्या? तो कहा, हाँ तुम्हारा भी है, सबसे नीचे। अब वो बड़ा निराश हुआ, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, मेरे से ज्यादा प्यार करने वाले बहुत हैं, ठीक है। दूसरी रात को फिर फरिश्ता आया, दूसरी लिस्ट थी हाथ में, पूछा आज किसकी लिस्ट लाए? उनकी, जिनको भगवान बहुत प्यार करता है। तो देखो मेरा भी नाम है क्या? कहाँ है, पहला ही है तुम्हारा। तो भगवान को प्यार करने वालों में आखिरी नाम, और भगवान प्यार करता है उसमें पहला नाम। सोचो भगवान किन्हें प्यार करता है? अब उत्तर देंगे आप, जो सच्चे हैं। सच्चे किसे कहते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा किन्हें प्यार करता है? बहने उत्तर देंगे, जल्दी उत्तर देना, इतनी देखो भाइयों ने फट से बोला। चलो भाई बोले, जो श्रीमत पे चलते, श्रीमत में सब आ गया। और बोलो, जो बहुत पवित्र हैं। बोलो अब किसको आयु छल? जो दिल से याद करते, फटाफट बोलो, बोलो ना, बस वही था आपका उत्तर, इसलिए चुप हुई। भाई बोलो, जो सर्विस, जोड़ो कुछ इसमें, जो मीठे हैं, जो दूसरों को बहुत सुख देते हैं। ये तो सबकी बात है, कोई निश्चय तो सबको है। जो रहम दिल हैं, ये बाबा के महावाक्यों में सब आ गया है। और जो मैंपन से मुक्त हैं, बिल्कुल अच्छी बात। सेवा हैं, बाप के कार्यों में मददगार हैं, सेवा कर रहे हैं। अब ये जो बात है, बाबा की सेवाएं बहुत बच्चे कर रहे हैं, उसके कार्यों में बहुत आत्माएं मददगार हैं, ऐसा कहेंगे लगभग सभी हैं, कोई ज्यादा हैं, कोई कम हैं। लेकिन बाबा का प्यार किन सेवाधारियों से रहता है? जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, जो सेवाओं में अपनी खुशी को खोते नहीं हैं, जो सेवा करके कुछ मांग नहीं रखते। वो जगह क्या हुआ है? सेवा की, सेंटर बनाने में किसी ने बहुत पैसा दिया और फिर क्या रखी शर्त? आप जानते हैं ना आगे, तो सब आप में से किसी ने ऐसा किया हो तो उसे छोड़ देना। अब सेवा की, बहुत पैसा लगाया, अब सोचते हैं सेंटर मेरा है। पहली सबसे बड़ी भूल, इससे तो क्या नुकसान होगा? पूरा जीरो। ये भी कई जगह हो चुका है थोड़ा थोड़ा। दूसरे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं अब बहने वैसा ही करें जैसा मैं कहूं, भगवान जो कहे वो न करें, ये जो मैं कहूं ये वो करें, ये दूसरे नंबर की आत्माएं उनका भी जीरो, क्योंकि ईगो बढ़ गया। तीसरे वो जिन्होंने बहुत सेवा की, पैसा लगाया, लेकिन वो ये चाहते हैं सबको पता तो चले, बहन जी हमारी कुछ महिमा तो करे क्लास में, कुछ बताए तो सही सबको। पीछे संकल्प भी दे देते हैं कि बहन जी मैं इसलिए नहीं कहता कि मेरा नाम हो, इसलिए कहता हूँ कि दूसरों को भी करने की प्रेरणा मिले। रॉयल रूप, ये इसमें आधा समाप्त हो जाता है। जो बिल्कुल किया, आगे आप बोलो, भूल गए, भूलने से भी पहले किया और बाबा को अर्पित कर दिया, तुमने ही तो दिया है तुमको अर्पित, ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति। ऐसे बाबा के बहुत बच्चे हैं, ये नहीं वही हैं जिन्होंने पूरे सेवा केंद्र बना के दे दिए और बहनों को कहा हमारा कहीं नाम भी ना हो, किसी को बताना भी नहीं कि इन्होंने सेवा की है। ऐसे बाबा के बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ऐसी आत्माओं की हर पाई जमा हो जाती है, उन सेवाओं का उनको बल भी मिल जाता है। तो सेवा करके जो समर्पित भाव से जीते हैं, सेवा के पीछे जिनका लक्ष्य बाबा के कार्यों को सफल करना होता है, सोच लें इस बात पे अच्छी तरह, सेवा का लक्ष्य बाबा के कार्य को, उसके यज्ञ को सफल करना होता है, वो बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। कई लोग क्या होते हैं, आपसी मनमुटाव से सेवा में बाधा डाल देते हैं, समझ गए ना बात, भाई किसी से हमारी नहीं बनती, हम वो काम नहीं करेंगे। उन्हें भूल जाता है कि वो कार्य उस व्यक्ति का नहीं है, वो तो बाबा का यज्ञ है। वो ऐसी आत्माओं को भी ईश्वरीय बल नहीं मिलता, जहां कहीं भी स्वार्थ आ गया। मुझे याद है शुरू से ही, हम तो छोटे थे, हमें तो बहुत ज्यादा दुनियावी बातों का तो बिल्कुल याद नहीं था, हम तो जैसे दुनिया में रहे ही नहीं थे जब तक दुनिया में थे, पढ़ाई की इसके अलावा इधर उधर नहीं देखा। तो कुछ दिन के बाद एक परिवार दिल्ली से आके यहाँ रहने लगे, जानते हैं आप उन्हें, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उनकी बहुत रुचि थी रोज सेवा सेवा एक उन्होंने ले ली थी सब्जी कटाने की ड्यूटी। तो उन दिनों यज्ञ में कुछ तो होता नहीं था, चाकू भी हमारे पास बहुत कम होते थे, चाकू हम इधर उधर से उनको इकट्ठी करके देते थे, उन्हें कठिनाई होती थी। मान लो सब्जी काटने 50 लोग आ गए और चाकू 30 ही हैं, तो वो एक चीज बोलते थे इंग्लिश में, हमें वो बहुत अच्छी लगती थी कि हमें कितना भी कठिनाई हो लेकिन बाबा का कार्य सफल नहीं होना चाहिए, यानी बाबा का काम में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए, हमें भले ही कोई बाधा हो। तो हमें ये बात बहुत अच्छी लगी उनकी कि हमें कष्ट हो लेकिन बाबा के कार्यों में जरा भी बाधा ना हो। ऐसे सेवा करने वालों को भी बाबा बहुत प्यार करता है, ऐसी आत्माएं भी उसके दिल में रहती हैं और ऐसी आत्माएं सेवा के बल से विघ्नों से मुक्त हो जाती हैं। ये सभी माताएं भी बहुत ध्यान रखें, सेवाओं का बल हमें विघ्नों से मुक्त करता है, सेवाओं का बल हमें योगयुक्त होने में बहुत मदद करता है। तो बाबा के दिल तख्त पर यदि हमें विराजमान होना है तो हमें बहुत स्वीट, सॉफ्ट, सुखदाई, बहुत निर्माण चित, स्वार्थ से मुक्त ऐसी स्थिति बनानी है। योगयुक्त होना वो बहुत सुंदर बात है, लेकिन ये धारणाएं भी बहुत जरूरी हैं। ये धारणाएं जैसे सबको खींचती हैं वैसे ही बाबा को भी खींचती हैं। भई आज पानी नहीं रखा संजय, तो हम सभी ध्यान देंगे, बहुत ध्यान दें अच्छी तरह। योगयुक्त आत्माएं तो बाबा को बहुत प्रिय हैं ही, लेकिन ज्ञानी आत्मा भी उसे बहुत प्रिय है। बाबा की मुरलियों में हम सब सुन चुके हैं, बाप से प्यार माना उसके मुरली से प्यार। मुरली से भी हमें बहुत प्यार होना चाहिए। प्यार केवल ये नहीं, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मुरली बहुत बार पढ़ लेना ये मुरली से प्यार है। बहुत बार पढ़ लेने से भी अच्छा होता है, हम भी अर्थ से मुक्त रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होता है, लेकिन हमें मुरली सुनते समय रोज सवेरे बहुत अच्छा अनुभव करना चाहिए और सुनाने वालों को भी। बहुत जगह मुरली ऐसी पढ़ी जाती है कि बस जैसे किताब पढ़ रहे हैं। कैसी पढ़े मुरली? भगवान बोल रहा है, उसमें अलौकिकता भरी हो, उसमें बाबा का प्यार छलकता हो, ऐसा लगे कि भगवान हमसे बातें कर रहा है। सभी पढ़ने वालों को, माताओं के घर में गीता पाठशाला भी हो, सभी ध्यान देना, मुरली केवल पढ़ने की चीज नहीं है, बहुत सुंदर अनुभूति उससे सबको करानी है। और मैं एक ही संकल्प दूंगा कि ऐसी मुरली पढ़ें कि मुरली सुनने वाले जब मुरली सुन के घर लौटें तो एक अलौकिक सुख लेकर लौटें। कई लोग मुरली सुनाते इधर उधर की बात भी करते हैं और कई लोग भारी होकर वापस जाते हैं, तो उस क्लास में कोई जाना पसंद नहीं करता। फिर सुनाने वाले कहते हैं मुरली सुनने 5 ही लोग आते हैं हमारे पास, तो मेरे पास भी आते हैं ऐसे लोग जो कहते हैं भाई जी मुरली सुनाने वालों की सुनने वालों की संख्या कैसे बढ़े ये तो बताओ विधि। तो मैं प्यार से समझाता हूँ, ऐसी सुनाओ घर बैठ न सके लोग खिंचे चले आए, हो सकता है या नहीं, खिंचे चले आए कि भगवान अमृत वर्षा कर रहा है, चलो उस वर्षा के बिना हम भूखे प्यासे रह जाएंगे। और सुनने वाले भी ऐसे ही सुने कि एकाग्रचित होकर जैसे भगवान की वाणी सुन रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं, भगवान हमसे रूढ़िहान कर रहा है, उसकी बहुत सुंदर अनुभूति करें। तो हम ध्यान देंगे बाबा की बात, शायद इस सीजन में हम बहुत सुने बाबा के दिल में कौन और बच्चों के दिल में कौन। और बाबा की आवाज संभव है हर बार फुल रहे, क्योंकि बाबा दादी को ध्यान में नहीं लेंगे ऐसा लग रहा है। लें तो उनकी मर्जी, हम कोई उनके मालिक नहीं है, मालिक वो स्वयं है। मैं तो हंसी में नीचे कईयों को उत्तर दे दिया जब कईयों ने कहा बाबा जोर से क्यों बोल रहे थे, तो मैंने कहा भाई आपको क्या दिक्कत हुई, भगवान है, जोर से बोले या धीमे बोले मालिक भी तो है ना। ठीक है, आपको लगा नहीं क्या कि बाबा आया कि नहीं? ये तो लगा बाबा था, पर वो जोर से आवाज क्यों थी? मैंने कहा वो जो वो है ना साउंड वाले, वॉल्यूम ज्यादा खोल दिया था इस बार उन्होंने, तो बाबा तो मालिक है ना, वो जैसे चाहे अपना कार्य करे। हमें रहस्यों को समझते हुए जरा भी संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाबा के आने का सुख ही नहीं मिलेगा। सारा टाइम यही सोचते रहेंगे बाबा ऐसा क्यों बोल रहा है, बाबा है या नहीं आया है या नहीं आया, और इसमें पूरा टाइम पूरा हो जाएगा। फिर पता चलेगा बाबा ही आया था, कहेंगे अरे 2 घंटे वेस्ट कर दिए हमने सोच सोच के। तो कोई भी डाउट नहीं, मेरे कहने से नहीं, लेकिन हर बात के रहस्य को अच्छी तरह समझते हुए संशय से मुक्त रहेंगे, तब बाबा के मिलन का, उसके आने का संपूर्ण लाभ होगा। और आपके यहाँ आने का भी, आप समय निकाल कर आते हैं सेवा में, आपको आनंद आएगा कि हम गए सेवा की तो प्रभु मिलन हुआ। अब सोचें कौन अपने दिल में बाबा को रख सकते हैं। मैं सोच रहा था, कल मैंने क्लास में कहा भी एक जगह कि इसी से शायद सबने कह दिया सबके दिल में भगवान का वास है। सुन लिया होगा ना, भगवान कह रहा है बच्चों के दिल में कौन भगवान है। तो अंतर मन में समा गया और वही लिखा गया सबके दिल में भगवान बैठा है ना सुरेश भाई, लिखने वालों ने भी कोई गलती नहीं की, यहीं से कैच कर ली बात और लिख दी कि सबके दिल में भगवान का वास है। लेकिन यदि हम अपने दिल में भगवान का वास करना चाहते हैं तो दिल कैसा होना चाहिए? साफ। दिल यहाँ कहते हैं बुद्धि को। हम दिल ही भाषा यूज करेंगे पर है बात बुद्धि की। दिल साफ, क्या क्या ना हो दिल में ये तो सब सुन लेते हैं, दिल साफ हो, लेकिन दिल में क्या क्या ना हो? व्यर्थ ना हो, और क्या ना हो? इसमें माताएं होशियार हैं, ठहरो भाई, हम माताएं उछल रही हैं, बोलो क्या क्या ना हो दिल में, बोलते जाओ, ठीक बोल रहे, बोलो आगे वाले, बोलो नहीं बाबा की याद नहीं, क्या क्या ना हो? ईर्ष्या द्वेष भी न हो, पर चिंतन प्रदर्शन भी न हो। देखो ये ऐसी चीजें हैं कि मनुष्य संपूर्ण त्याग कर चुका हो, उसे योगयुक्त होने का भी बहुत शौक हो, उसकी ज्ञान में भी बहुत रुचि हो, लेकिन यदि उसके पास ईर्ष्या द्वेष और पर चिंतन है दो ही चीजें, तो जीवन खाली खाली, खुशी का तो नाम नहीं रहेगा। वो सदैव दूसरों को देखते रहेंगे, ये आगे बढ़ रहे हैं, इनका दिल जल रहा है। दादी प्रकाश मणि कहा करती थी, दूसरे आगे बढ़े हमारा दिल ठरे, ठरे माना ठंडा हो, खुश हो। लेकिन कुछ लोग कहे दूसरे आगे बढ़े ये परेशान हो। दादी जानकी बहुत अच्छी बात कहती थी, शुरू से ही हमने सीखा था, बहुत सुंदर प्रैक्टिस थी ना दादी की, साधनाएं बहुत जबरदस्त थी। अब तो बहुत बुजुर्ग हो गई, कल हम गए थे मिलने तो गर्दन झुक गई है, जैसे बूढ़ों की झुक जाती है ना, पीठ थोड़ी झुक गई, वो बार बार सीधी करा रहे थे फिर हो जाती थी, आयु बहुत 100 साल हो गई ना, लेकिन मेमोरी अभी भी ना, उसमें कोई असर नहीं पड़ा। मैं सोचा भूल गई होगी, तो मैं कल मिलने गया, जाते ही कहा, बहुत लोग बैठे, लंदन का अनुभव सुनाना सबको, अभी वहां सब बड़े बड़े लोग भाई बहने बैठे थे, बहने थी बहुत करके, सब जोन इंचार्ज ज्यादातर, बहुत सारी 50-60, लेकिन कहा कि ट्रेन जा रही है तो जल्दी जल्दी, दादी ने टोली दी, कुछ नहीं बोला। मैं सोचा था भूल गई होगी। शाम को मैं क्लास करा रहा था अपनी, 6:30 से 7:30 होती है, 7 बजे मैसेज भेज दिया, सूर्य को कहो 7:30 से लंदन का अनुभव सुनाए क्लास में। मैं सोचा देखो भूली नहीं दादी, मेमोरी फुल काम करती है, तो बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ी तपस्या है ना उनकी। तो कहा करती थी, आपको भी काम आएगी ये बात, मुझे भी बहुत काम आई, हमारी अवगुणी दृष्टि होती है ना थोड़ी बहुत, तो कहती थी अवगुण दूसरों के और मुसीबत हमारी। मुसीबत हुई ना, हम परेशान हो रहे सोच सोच के, खुशी खो रहे हैं, योग तोड़ दिया है बिना मतलब, अवगुण उनके, परेशानी हमारी, मुसीबत हमारी। मुझे बहुत भा गई ये बात, बात बहुत पहले की है, जब बाबा व्यक्त हुए 2-4 साल, दादी बहुत रहती थी मधुबन में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि हमने दूसरों के अवगुण बुद्धि में रख लिए तो बाबा तो बैठेगा नहीं। तो बुद्धि को ऐसा बनाए जिसमें भगवान विराजमान हो सके, सबको सोचना है, अपने से बातें करेंगे सभी। अब जो यहाँ सेवाओं में आए हैं, बहुत कैसा सुंदर मौका हम सबको मिला है। भगवान न केवल ज्ञान अमृत की बरसात कर रहा है, शक्तियां दे रहा है, वरदान दे रहा है, और बड़ी चीज क्या दे रहा है, और बड़ी चीज जिसके लिए चिंतन करना है सबको, भाग्य दे रहा है। भाग्य बढ़ाने की विधि भी बता रहा है, भाग्य बांटने आया है, अपने से बात करेंगे। कितना सुंदर मौका मिला है, भाग्यवान आत्माओं को यह अवसर मिला है। इसलिए बहुत भाई बहने संसार छोड़ के समर्पित हो गए बाबा के कार्य में, श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने के लिए। ये भाग्य है और ये बुद्धिमानी है आत्माओं की कि अब संसार में उलझे न रहें। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग बहने आती हैं मेरे पास, एमटेक किया है मैंने, समर्पित होना चाहती हूँ। मैं पूछता हूँ फिर एमटेक क्यों किया, एमटेक बहुत बड़ी डिग्री है इंजीनियरिंग की। मैं पूछता हूँ फिर एमटेक क्यों किया है, सेवा में लगना चाहती हो, समर्पित होना चाहती है। देखो कितनी बड़ी चीज है, बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर समर्पित करना चाहती है जी। मैं पूछता हूँ दुनिया में कुछ परेशानी है क्या कि नहीं, घर वाले तंग करते हैं क्या, नहीं, फिर क्यों समर्पित होना चाहती, क्यों पढ़ी, इसलिए पढ़ी कि हमारे पास बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए ताकि हम सेवा कर सकें। एक अच्छा संकल्प है। कई बहनें आती है मैंने एमबीए कर लिया, अब समर्पित होना चाहते। फिर मैंने कहा एमबीए क्यों किया, कि नहीं बस वो एक संकल्प था एमबीए कर ले, इच्छा हमारी समर्पित होने की थी। तो देखिए बड़ा बड़ा त्याग हमारे भाई बहने कर रहे हैं ना, ऐसा त्याग संसार में और कोई नहीं करता है। जो इसलिए समर्पित नहीं हो रहे कि उनको संसार में कोई मुसीबत है, इसलिए समर्पित हो रहे हैं कि उन्होंने बाबा को पहचान लिया है, उसके कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं, उससे सर्वस्व प्राप्त करना चाहते हैं। तो सब चिंतन करेंगे, त्याग सबका है। जो भी यहाँ बैठे आप समर्पित हैं या घर में हैं, बहुत बड़ा त्याग सबका है। कलयुगी भोजन छोड़ देना ही बहुत बड़ा त्याग है ना, सफेद वस्त्र पहन लेना ही बहुत बड़ा त्याग है, मनोविकारों को छोड़ना, छोड़ने का संकल्प करना, यही बहुत बड़ा त्याग है। तो सभी चिंतन करेंगे, त्याग करके संपूर्ण भाग्य बाबा से लेना है। सब माताएं जो भोली बैठी है ना, सब सोचना बाबा से संपूर्ण भाग्य लेना है। एक ही बार ये मौका मिलता है और भाग्य भी ऐसा है जो अगले पूरे कल्प में हमारे साथ चलेगा। 84 जन्मों का भाग्य मिल रहा है, चाहे तो जन्म जन्म के लिए रजाई प्राप्त कर लें, चाहे जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान ले लें, चाहे जन्म जन्म के लिए हर कदम के लिए सफलता का वरदान ले लें। हमारा जीवन हर जन्म में हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे, हम ये भाग्य बना लें। ये इसमें सब आ जाता है ना, हमारे हाथ में है अब। तो सभी बहुत अच्छी तरह से चिंतन करेंगे कि जिस महान कार्य के लिए हम बाबा के पास आए हैं वही हमें करना है। ये पर चिंतन तो दुनिया वाले बहुत कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं, सवेर से शाम तक काम धंधा कम, इधर उधर की बातें ज्यादा, अवगुणी दृष्टि, ईर्ष्या द्वेष, इसमें तो सारा संसार लगा हुआ है। हमारा जीवन, हमारा ये समय इन सब के लिए नहीं। कौन क्या कर रहा है, आंखें बंद कर लें, चिंतन करेंगे सभी। अब तो ये सोचना है हम क्या कर रहे हैं और मुझे क्या करना है, कहीं इधर उधर मन बुद्धि भटक तो नहीं रही, क्या हो रहा है, कहीं व्यर्थ में परेशानियां तो जीवन में नहीं आ गई हैं, वो बात मैं आप सबको फिर कह देता हूं। संसार में परेशानियां, चिंताएं, डर, बिना मतलब की, बिना मतलब मन भटकना बहुत बढ़ रहा। आज ही मेरे पास 3-4 फोन आ गए। मैंने क्या अपना एक नंबर खोला कुछ करने के लिए, तो फटाफट फोन, फटाफट मैं फोन भी नहीं कर पाया। क्या स्टूडेंट्स के फोन, बिना मतलब मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। कोटा से एक का फोन, अभी शाम को बहुत पैसे खर्च हो गए हैं, IIT की तैयारी कर रहा हूं, 2 साल हो गए हैं कोटा में रहते हुए, क्लियर नहीं हो रहा है, पैसा बहुत खर्च हो गया है, माँ बाप भी बहुत उम्मीदों के साथ कोटा में भेजते हैं बच्चों को कोचिंग के लिए, इंजीनियरिंग की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, IIT, MBA सब की करते हैं वहां। तो कहा क्या हो गया, मुझे पता नहीं चल रहा है, पढ़ रहा हूं कुछ याद नहीं हो रहा है, डर बना हुआ है, एग्जाम से डर लग रहा है, ये डर लग रहा है पता नहीं अब होगा या नहीं। होता है ना, ये एक दो बार क्लियर न हुआ हो तो मनुष्य बच्चों को डर हो जाता है। तो ये सब संसार में बढ़ रहा है, हमें इन सब से भी स्वयं को बचाना है, गृहस्थियों को भी, बिना मतलब का भय, बच्चों से परेशानियां, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने ही अंदर बहुत व्यर्थ ज्यादा सोच रहे हैं, अपने को इन चीजों से बचाना है। इसलिए बहुत हल्के रहेंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे, इन दोनों चीजों पे ध्यान देना है। हल्के ताकि किसी भी चीज का इफेक्ट ना आता रहे मन पर, बहुत खुश। विदेश में हम थे तो ये टॉपिक बहुत चला, लव और हैप्पीनेस, सबसे बड़ी हीलिंग पावर, खुशी और प्रेम, इसमें सबसे बड़ी रोगों को ठीक करने की शक्ति है, कई जगह ये टॉपिक थे। तो हम भी अपने अंदर प्रेम और खुशी को बहुत बढ़ाएं, प्रेम की बहुत जरूरत है, सारे संसार की आत्माओं के लिए प्यार सब हमारे हैं, और इसके लिए बहुत अच्छा स्वमान अभ्यास करना है। मैं पूर्वज हूं, पूर्वज, एंसेस्टर, सभी आत्माओं को हमसे गुड वाइब्रेशंस जाएं, प्रेम की फीलिंग जाए, ऐसा हमें संकल्प रखना है। तो हम सभी ये ध्यान दें, बाबा का ये महावाक्य है, बाप से प्यार माना उसके रचना से प्यार। अगर कोई कहे हम भगवान को तो बहुत प्यार करते हैं पर मनुष्यों से हमें नफरत हो गई है, तो बाबा ने कह दिया बाप ऐसे प्यार को स्वीकार नहीं करते हैं। तो बाबा को यदि हमें अपने दिल में बैठाना है तो उसकी रचना से भी बहुत प्यार हो, उसकी रचना ये यज्ञ भी है, उसकी रचना ये ब्राह्मण भी हैं, और उसकी रचना सारा संसार भी है, प्रकृति भी है। भले ही प्रकृति भी अनादि है पर भगवान के अधीन काम करती है ना ये सब चीजें। हमें इन सब से प्यार रखना है, सूक्ष्म प्यार की फीलिंग हमसे इन सब को जाए तो हमारा चित्त भी बहुत शांत और निर्मल रहेगा। तो पसंद है ये बात सभी को, एकांत में चिंतन, क्यों आए हैं बाबा के पास। माताएं विशेष चिंतन करेंगी, माताओं की कोई गलती नहीं है, जिन बच्चों की पालना की है, जिन बच्चों को जन्म दिया है, जिनसे वो इमोशनली बहुत जुड़ी हुई हैं, उनकी परेशानियों के कारण माताएं परेशान तो हो ही जाती हैं, लेकिन परेशान होने की बजाय क्या सोचना है, बोलो माताएं क्या सोचना है। हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा का अपना भाग्य है, लेकिन ये कह के छोड़ भी तो नहीं सकते ना, आपके बच्चे हैं वो दुखी हो रहे हो, आप कहें होने दो ये इनका पार्ट है, चलेगा ये काम नहीं चलेगा। तो उन्हें वाइब्रेशंस देने हैं, इसलिए माताओं को मैं खास कहता हूं, अपने बच्चों की मदद करो, परेशान न हो, उनके लिए विशेष योग करो। और ऐसे बहुत माताओं के अनुभव हो चुके हैं कि योग अभ्यास से उनके बच्चे ठीक हो गए। शराब पीते थे, छोड़ दी। कोई बुरे संग में चले गए थे, छोड़ दिया। घर में अच्छी सुख शांति हो गई। इसलिए माताएं विशेष ध्यान दें, ऐसा न कर लें कि बच्चों की परेशानी के कारण अपना योग भी न लगे। अगर योग ही नहीं लगेगा तो बच्चों को मदद कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक का अनुभव मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, आपको भी काम आएगा। एक ऐसी आत्मा जिसके जीवन में बहुत परेशानी थी, है अभी भी, बहुत समय से ज्ञान में है वो, पति की ओर से परेशानी, बच्चों की ओर से परेशानी, और सच तो ये है कि अपने से ही वो परेशान, हमेशा मेरे पास आती। मैं उसे छोटे छोटे तरीके बताता, उससे कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं कर पाती थी वो, मेरे से कुछ नहीं होता है, मैं सब करके देख लिया। अब बाबा के एक दिन पहले आई, साल में 2-3 बार आ जाती है, अच्छे घर से है। बाबा से पहले आई, सब बैठे थे, मैंने उसे कहा आप तो बात न करो, मैं इनकी सुन लू, क्योंकि आपका तो मुझे पता है। हंसने लगी, फिर मेरे मुख से निकल गया आप कुछ करती तो हो नहीं, तो आपको क्या बताऊं अब मैं। तो थोड़ी सी बेचारी का चेहरा बदल गया। मैंने कहा भाई एक चीज कहता हूं आपको, अगर आप कल बाबा आ रहे हैं और कर लो, फिर मेरे पास आना, अगर तुम कर लेती हो तो आगे मैं कुछ बताऊंगा। कहा अच्छा बताओ, मैं पूरा जोर लगाती हूं। बात सिंपल थी, उससे कुछ तो होता नहीं था, योग नहीं लगता है, शरीरीपन नहीं होता, स्वमान नहीं होता। अब आप सोच सकते हैं कुछ भी नहीं होता तो क्या करेगी। मैंने कहा कि कल बाबा का दिन है, 14 तारीख, सारे दिन में 1000 बार याद करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मंत्र बना लो। क्या अनुभव तो कुछ होता नहीं। मैंने कहा अनुभव को एक तरफ रख दो, केवल रटना तुम मंत्र। मैंने कहा करोगी? कि अच्छा करती हूं। उसका गुड टाइम था, किया उसने, और 15 तारीख को सवेरे आई, चेहरा बदला हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? कहा 500 बार की तो मैंने किया ही होगा। कहा पहली बार जीवन में बाबा के मिलन का कुछ सुखद अनुभव हुआ है 25-30 साल में। तब तो बाबा कितना, क्या रूप था बाबा का, आप सब जानते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनसे कुछ भी नहीं होता, वो 2-4 स्वमान ले लो। मैंने कई योग प्रैक्टिस कराई है ये 3 दिन में, अब 2-3 स्वमान ले लो, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विजयी रतन हूं, 3 स्वमान बहुत सुंदर हैं। लगातार याद कर लो, 7 दिन करो बस, 7 दिन काफी हैं। एक दिन एक स्वमान, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, फिर रिपीट करो, 9 दिन कर लो, 3-3 बार कर लो, और देखो मन कितना एकाग्र होता है, फिर योग अच्छा लगेगा और अनेक सुंदर अनुभूति होगी। भोजन बनाते समय माताएं यहां जो रोटी बेलती हैं, सब्जी काटती हैं, भाई जो भोजन बनाते हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इसका बहुत अभ्यास कर जाओ, आपके घरों की अनेक समस्याएं ठीक हो जाएंगी। करके देखो जरा, घरों की अनेक समस्याएं हल, क्योंकि उससे वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो ऐसा सभी अभ्यास करेंगे, और बाबा हमारे दिल में है। अब के बाबा कहे नहीं, बाबा जब देखे तो सबके दिल में उसे दिखे कि मैं सबके अंदर कैसे चला गया, मैं तो इधर बैठा हूं, ऐसा लगे उसे। बाबा खुश हो जाए कि सबके दिल में मेरा वास हो गया है, और जब सबके दिल में उसका वास हो जाएगा तो सारा संसार उसे देखेगा, हम सबसे वो दिखाई देगा, और बाबा की जय जयकार हो जाएगी, क्योंकि बाबा को अब अपना कार्य पूर्ण तो करना है ना, खेल पूरा होने को है, समय आगे बढ़ रहा है, तो हम इसी तरह बहुत आगे बढ़ेंगे। और अगली बार तक जब बाबा आए, 3 को है ना बाबा, 3 को, बहुत नजदीक है, 13 और 3 15 ही दिन है, बस ज्यादा नहीं, 15 दिन बहुत अच्छे अभ्यास करें। माताएं रहेंगी तब तक, सब रहेंगे ना, भाई भी जो रहे बहुत अच्छा अभ्यास करें। सीजन तो बड़ा नहीं है, इसलिए बाबा के कमरे में 3-4 बार बैठ के योग करेंगे। उधर भी बाबा का कमरा है, ऊपर भी है जो जा सकें, इधर भी है, एकांत है, बहुत अच्छी जगह। 4 बार 15-20 मिनट एक बार में बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे। स्वमान जो भी आपको अच्छा लगे उसको ज्यादा याद करना, और इस तरह रोज 15 मिनट एकांत में लेकर अपने से बातें करना, तो योग का चार्ट बढ़ता जाएगा और रोज बाबा के मिलन का अनुभव होगा। ओम शांति।